Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और अपरोक्ष जो वस्तु है उसको देखना हो तो चर्म चक्षु और धर्म चक्षु दोनों चक्षु से नहीं दिखेगा अपरोक्ष वस्तु, उसके लिए ज्ञान चक्षु की आवश्यकता, क्योंकि आप अपरोक्ष हैं, संसार प्रत्यक्ष है। ये जो दिखने वाला संसार है वो क्या है? प्रत्यक्ष है। स्वर्ग नरक परोक्ष है, और आप संसार की तरह प्रत्यक्ष भी नहीं, स्वर्ग नरक की तरह परोक्ष भी नहीं, तो फिर आप कैसे हैं? तो आप अपरोक्ष हैं। उस अपरोक्ष को कैसे देखेंगे आप? तो फिर ज्ञान चक्षु से। तो तीन दृष्टि स्पष्ट हो गए कि नहीं गीता के हिसाब से? तो इसीलिए यहां कह रहे हैं परमात्मा जो एक है, सारे जगत को उत्पन्न करता है और अंत में सारे विश्व को अपने लय करता है, वही परमात्मा विश्वरूप होकर आपको भी प्रत्यक्ष हो जावे, इसके लिए वह मूर्त भौतिक उपाधि को लेकर प्रकट होता है। तब उस उपाधि में प्रकट हुआ उस परमात्मा को आप पहचानोगे तो आपका काम बनेगा, नहीं पहचाना, नहीं देखा, अनुभव नहीं किया तो फिर आप उसको कहीं भी अनुभव नहीं कर पाओगे। इसके लिए नया दृष्टि दे रहे हैं वो ऋषि, श्वेताश्वतर की ऋषि। तदेव अग्नि, तद एव अग्नि, अग्निरेव तत्। तत् ये जो पद आया है वो किसके लिए? जिस एक परमात्मा की चर्चा चल रही है उसके लिए यहां तत्। इसलिए परमात्मा को हमेशा तत् पद के द्वारा ही कहा जाएगा और अनात्मा को एतत् कहा जाएगा और जीवात्मा को त्वम पद के द्वारा कहा जाएगा। तत् त्वम एतत्। स्वाध्याय में, ब्रह्मसूत्र के स्वाध्याय में चर्चा चल रही है, प्रकरण चल रहा है कि नचिकेता ने तीन प्रश्न किए, अग्नि विषयक, जीवात्मा विषयक और परमात्मा विषयक, और यमराज ने भी ये तीन विषय का ही उत्तर दिया है। अग्नि के बारे में जानना चाहता था नचिकेता, अग्नि के बारे में ही यमराज ने उपदेश किया। जीवात्मा के बारे में जानना चाहता था, जीवात्मा के बारे में ही यमराज का उपदेश है, और परमात्मा के बारे में जानना चाहता था नचिकेता तो परमात्मा के बारे में ही यमराज का उपदेश है। इसकी तीन के अलावा चौथा कोई उपदेश नहीं है। आप लोगों ने सुबह स्वाध्याय, कल के स्वाध्याय श्रवण किया था। पूर्व पक्ष सांख्यवादी कहते थे कि नहीं, ये तीन के अलावा महत्त्व भी नचिकेता के द्वारा जिज्ञास्य है और महत्त्व के बारे में भी यमराज के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पूर्व पक्ष का ही कहना था, लेकिन शंकराचार्य ने उसका निषेध कर दिया। तदेव अग्नि, तत् एव अग्नि, तत् माने तत् पद का वाच्यार्थ, तत्पद का वाच्यार्थ अग्नि है। तत्पद के लक्ष्यार्थ को आप आंखों से नहीं देख पाओगे, तब तत्पद के वाच्यार्थ को देख पाओगे। जिस तरह हम तुम पद के वाच्यार्थ को ही तुम्हें देख पाते हैं, तुम पद के लक्ष्यार्थ को तो तुम्हें अनुभव नहीं कर पाते। तुम पद के लक्ष्यार्थ को हम नहीं देख पा रहे हैं, परंतु तुम पद के वाच्यार्थ तो हम देख रहे हैं ना। तुम पद के वाच्यार्थ क्या है? एक कर्ता भोक्ता जन्म मरण वाला उपाधि विशिष्ट चैतन्य, तुम पद का वाच्यार्थ। सोपाधिक चैतन्य तुम पद का वाच्यार्थ, उपाधि रहित चैतन्य शुद्ध जो चैतन्य हुआ तुम पद का लक्ष्यार्थ। तुम पद के लक्ष्यार्थ का हम आपको कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे जागृत में, इन इंद्रियों से, इन इंद्रियों से जागृत में जो अनुभव करेंगे आपके बारे में हम, तुम पद के वाच्यार्थ आपका अनुभव करेंगे, तुम पद के लक्ष्यार्थ आपका अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि तुम पद का लक्ष्यार्थ अन्य के द्वारा अन्य तुम पद का लक्ष्यार्थ का अनुभव संभव ही नहीं है। आपको बात समझ में आई कि नहीं? अन्य द्वारा अन्य तुम पद के लक्ष्यार्थ का अनुभव तीन काल में संभव नहीं है। प्रत्यक्ष भी संभव नहीं, परोक्ष भी संभव नहीं, अपरोक्ष भी संभव नहीं है। तुम पद का लक्ष्यार्थ तो स्वयं के द्वारा अनुभव संभव है, अन्य के द्वारा संभव नहीं है। मेरे तुम पद के लक्ष्यार्थ को तुम कभी भी तीन काल में अनुभव नहीं कर सकते। तुम्हारे तुम पद के लक्ष्यार्थ को मैं तीन काल में अनुभव नहीं कर सकता। यदि मैं तुम्हारे बारे में अनुभव कर सकता हूं तो तुम पद के वाच्यार्थ को ही अनुभव कर सकता हूं। यदि आप मेरे बारे में अनुभव कर सकते हो तो तुम पद के वाच्यार्थ के बारे में अनुभव कर सकते हो। आत्मानंद गिरी नेपाल के बहुत बढ़िया वेदांत के प्रवचन करता, ये तुम पद के वाच्यार्थ है, ये लक्ष्यार्थ नहीं है। तुम पद का लक्ष्यार्थ नेपाल का होगा? तुम पद का लक्ष्यार्थ प्रवचन करता होगा? तुम पद का लक्ष्यार्थ नेपाल से बंबई आएगा, बंबई से फिर नेपाल जाएगा? ये सारे कर्म करने वाला, ये सारी क्रियाएं तो कहां है? तुम पद के वाच्यार्थ में, लक्ष्यार्थ में नहीं है। और वाच्यार्थ मतलब सोपादिक। इसी तरह तुम पद के जो तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है वो आपको आपसे भिन्न के रूप में अनुभव नहीं होगा। तुम पद का लक्ष्यार्थ आपको अपने भिन्न के रूप में अनुभव नहीं होगा। आपको अपने से भिन्न के रूप में जो अनुभव होगा वो तुम पद का वाच्यार्थ का अनुभव होगा, लक्ष्यार्थ का अनुभव नहीं होगा। सोपाधिक चैतन्य ब्रह्म का अनुभव हो सकता है, निरुपाधिक चैतन्य ब्रह्म का अनुभव तुमको किसी भी हालत में नहीं होगा, अपने से भिन्न रूप में। और निरुपाधिक चैतन्य का अनुभव तुम्हें होगा तो तब होगा जब वह तुमसे अभिन्न होगा। तो तुम्हें जिस समय तत्पद के लक्ष्यार्थ का अनुभव होगा उसी समय में तत्पद के लक्ष्यार्थ का भी अनुभव अपने आप हो जाएगा। तत्पद के लक्ष्यार्थ के अनुभव करने के लिए आपको पृथक प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा। जिस दिन जिस समय तुम पद के लक्ष्यार्थ का आपको अनुभव होगा उसी दिन उसी समय तत्पद का लक्ष्यार्थ का भी अनुभव हो जाएगा। वो अनुभव द्वैत के रूप में नहीं, भिन्न के रूप में नहीं, अभिन्न के रूप में हो जाएगा। तब उस परमात्मा को क्या अनुभव करने केवल लक्ष्यार्थ में ही अनुभव किया जाएगा, वाच्यार्थ में नहीं? तो वाच्यार्थ में भी अनुभव हो सकता है। वाच्यार्थ में अनुभव सोपाधिक परमात्मा का होगा। वो सोपाधिक परमात्मा कैसा होगा? वाच्यार्थ परमात्मा वो होगा अग्नि रूप होगा। जो अग्नि है वो परमात्मा का वाच्यार्थ है। और जब आप वाच्यार्थ का ही अनुभव नहीं कर पा रहे हो तो फिर लक्ष्यार्थ का कैसे अनुभव करोगे? शरीर के सहित आत्मानंद को ही नहीं पहचान पा रहे हो तो शरीर के रहित आत्मानंद को कैसे पहचानोगे? बात समझ में आ गई? शरीर के सहित बैठा हुआ आत्मानंद को जब तुम नहीं पहचान रहे हो तो शरीर के रहित आत्मानंद को पहचानने का कोई उपाय है तुम्हारे पास? तो पहले शरीर रहित आत्मानंद को पहचानने के लिए शरीर सहित आत्मानंद को पहचानना पड़ेगा। पहले वाच्यार्थ ज्ञान होगा तभी लक्ष्यार्थ ज्ञान होगा। वाच्यार्थ ज्ञान के बिना लक्ष्यार्थ का ज्ञान नहीं होगा। ये आज बहुत गहरे वेदांत की चर्चा चल पड़ी है। तदेव अग्नि, तद एव अग्नि, जो तत्पद का लक्ष्यार्थ है वही तत्पद का वाच्यार्थ के रूप में, अग्नि के रूप में आपके सामने प्रकट हो रहा है। और जो आपके सामने प्रकट हुआ हुआ अग्नि है वही तत्पद का लक्ष्यार्थ है। उस तत्पद के लक्ष्यार्थ से भिन्न नहीं है। और कहीं तुम भिन्न मान लो तो गलती हो जाएगी, तब आत्मानंद को भोजन खिलाना होगा तो शरीर के माध्यम से खिलाओगे कि बिना शरीर के? आत्मानंद तो हम, ये तो शरीर है, शरीर को हम थोड़ी भोजन खिलाएंगे, हम तो आत्मानंद को खिलाएंगे। आत्मानंद जी शरीर से बाहर निकल के आ जाओ तब हम भोजन खिलाएंगे, तो संभव होगा? तो परमात्मा की सेवा, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का भजन, ये वाच्यार्थ सोपाधिक अग्निमुखा ही देवा, ये तो अग्नि तो परमात्मा का मुख ही है, अर्थात अग्नि मुख्य परमात्मा है। तदेव अग्नि अग्निरेव तत्। श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी ने मांडुक्य उपनिषद, ये श्वेता सूत्र उपनिषद बहुत विस्तृत व्याख्या की है, बहुत सुंदर ढंग से व्युत्पत्ति किया है। तो अग्नि तत्पद है, तत् ही अग्नि है, तो अग्नि और तत् अभिन्न है, भिन्न नहीं है। अग्नि कल्पित है, अग्नि अवच्छिन्न जो चैतन्य है वही तत् है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आपको अग्नि में परमात्मा का दर्शन होगा। अग्नि, अग्नि जो उपाधि, और उस उपाधि अवच्छिन्न जो अग्नि का आत्मा, अग्नि में अग्नि अवच्छिन्न चैतन्य रहेगा कि नहीं? संसार के हर वस्तु में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी उपाधि हैं, तत्त उपाधियों के द्वारा अवच्छिन्न तद अधिष्ठान चैतन्य होगा। वो चैतन्य तत्पद का लक्ष्यार्थ है, अग्नि तत्पद का लक्ष्यार्थ नहीं है। अग्नि अवच्छिन्न चैतन्य तत्पद का लक्ष्यार्थ है। वो चैतन्य अग्नि होने पर भी रहेगा और अग्नि न होने पर भी रहेगा, अधिष्ठान की विशेषता है। उपाधि आने पर भी रहता है, उपाधि न आने पर भी रहता है। तब अग्नि अवच्छिन्न चैतन्य को तुमने परमात्मा के रूप में अनुभव कर लिया तो सर्वत्र परमात्मा का अनुभव होगा, क्योंकि एक उपाधि में अवच्छिन्न परमात्मा का अनुभव किया तो फिर वही फॉर्मूला सभी उपाधियों में परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। और एक उपाधि अवच्छिन्न परमात्मा का अनुभव तुमने नहीं कर पाए तो फिर किसी भी उपाधि अवच्छिन्न परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। तो तुलसीदास जी सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पानी, ये जो कह रहे हैं उपाधि को लेकर नहीं कह रहे हैं, उपाधि अवच्छिन्न चैतन्य को लेकर कह रहे हैं। तदेव अग्निस् तदादित्य, दूसरा वाक्य है तद एव आदित्य। आपको अग्नि यदि पसंद नहीं आई, जब अग्नि पसंद नहीं आएगी तो अग्नि अवच्छिन्न चैतन्य किस तरह पसंद आएगा? तो बोले अग्नि आपको पसंद नहीं है तो सूर्य तो पसंद है, तदेव आदित्य, वो दूसरे रूप में खड़ा है, उस रूप में तो फिर मान लो। आदित्य एक उपाधि है, सूर्य परमात्मा नहीं है, ये वेदांत की प्रक्रिया है। सूर्य परमात्मा नहीं है, परंतु सूर्य है उपाधि, उस उपाधि अवच्छिन्न जो चैतन्य वो तो परमात्मा है, क्योंकि चैतन्य एक ही है, वो चैतन्य परमात्मा का स्वरूप है। चाहे सूर्य अवच्छिन्न चैतन्य हो, चाहे अग्नि अवच्छिन्न चैतन्य हो, वो चैतन्य परमात्मा का स्वरूप है। उपाधि हमेशा जड़ रहेगा और जड़ावच्छिन्न जो चैतन्य है वो हमेशा चैतन्य रहेगा, उस जड़ का अधिष्ठान और प्रकाशक होगा वो चैतन्य होगा। सूर्य जड़ है, सूर्य मंडल जड़ है, परंतु सूर्य अवच्छिन्न जो चैतन्य है वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। सूर्य प्रकाशित हो रहा है, सूर्य किसके द्वारा? तो सूर्य अवच्छिन्न चैतन्य के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। आप जीवंत तो हो रहे हैं किसके द्वारा? देहावच्छिन्न चैतन्य के द्वारा। जिस तरह देहावच्छिन्न चैतन्य के द्वारा देह जीवंत तो होता है, उसी तरह सूर्य अवच्छिन्न चैतन्य के द्वारा सूर्य प्रकाशित होता है, उसी तरह अग्नि अवच्छिन्न चैतन्य के द्वारा अग्नि प्रज्वलित होता है, उसी तरह जलावच्छिन्न चैतन्य के द्वारा जल प्रवाहित होता है, वायु अवच्छिन्न चैतन्य के द्वारा वायु। बात समझ में आ गई आपको? वेदांत समझ में आ गए? प्रक्रिया समझ में आ जाए तो वेदांत समझने में कोई कठिनाई नहीं है। तदेवाग्निस् तदादित्य, ये चमकता हुआ प्रातकालीन उदित पूर्व दिशा से उदित होता हुआ ये सूर्य है, यही तत्पद का वाच्य अर्थ है। तो तद एव सूर्य, सूर्य एव तत्, सूर्य को देखकर आपको तत्पद का लक्ष्यार्थ की स्मृति होती है तो फिर आपकी दृष्टि सही है। अग्नि को देखकर तत्पद के लक्ष्यार्थ की स्मृति होती है तब आपकी दृष्टि सही है। इस देह को देखकर तत्पद का लक्ष्यार्थ आत्मानंद की स्मृति होती है तो फिर आपकी दृष्टि सही है। एक ही गलत है, वो है इस देह को देखकर आत्मानंद की स्मृति तो होती है, इस देह को देखकर ज्ञानानंद परमात्मानंद रामानंद की स्मृति नहीं होती, होती है विद्यानंद की स्मृति होती है इस देह को देखकर। यही गलती है और कुछ नहीं, यही गलती है तो वही चीज है, क्योंकि विद्यानंद देहावच्छिन्न जो चैतन्य वही रामानंद देहावच्छिन्न चैतन्य में विद्यमान है। चैतन्य दो हो ही नहीं सकते, देह दो हो सकते हैं, चैतन्य दो हो ही नहीं सकते। एक ही देह मन चैतन्य सभी देहों में विद्यमान है, तब आपको देखकर मुझे विद्यानंद की स्मृति क्यों नहीं हो पाती है? यही तो गलती है, क्योंकि इस देह को देखकर, जबकि है वही चीज, चैतन्य तो एक है, सभी उपाधियों में वही व्यक्त हुआ है और उसी में सभी उपाधियां सन्निहित हैं, टिके हुए हैं। तदेवाग्निस् तदादित्यस् तद वायु, अब आप वायु तो का अनुभव कर रहे हो, ये जो वायु का अनुभव कर रहे हो ये वायु तो उस चैतन्य का देह है, और इस आप उसका अनुभव करना चाहते हो जागृत आदि में, तो वायु के रूप में अनुभव कर सको तो आप परमात्मा का जागृत में इसी अवस्था में अनुभव कर पाओगे, और वायु के रूप में अनुभव नहीं कर पाए तो वायु अवच्छिन्न चैतन्य वायु से भिन्न के रूप में अनुभव नहीं होगा। तो ये तो परमात्मा ने अपने अनुभव के लिए आपको एक सरल उपाय बनाकर उसने अनेक उपाधि धारण किया है ताकि इन उपाधियों के द्वारा व्यक्ति साधक भक्त मेरा अनुभव कर सके। इसके लिए तदेवाग्निस् तदादित्यस् तद्वायुस् तदचंद्रमा, और आगे जो रात्रि के समय में आकाश में सौम्य प्रकाश वाला है वो चंद्रमंडल है, और चंद्रमंडल इस तरह रात्रि के समय किस क्यों प्रकाशित होता है, किस तरह प्रकाशित होता है, तो कहते हैं वो चंद्रमंडलावच्छिन्न चैतन्य चंद्रमंडल में विद्यमान है, उस चैतन्य के माध्यम से वो चंद्रमंडल प्रकाशित हो रहा है। तब आपको ये निश्चय करना पड़ेगा कि चंद्रमंडल अलग चीज है, चंद्रमंडल में प्रकाशित होने वाला प्रकाश अलग चीज है। प्रकाश वो आत्मा का परमात्मा का स्वरूप है, मंडल उसकी उपाधि है, अनुभव करने के लिए उसके एक अलग उपाधि है, सारा विश्व उस परमात्मा का उपाधि है। तो इस उपाधि को लेकर ही ये कहा है हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगत नहीं भिन्न तनु इति ये समति परमार्थ गति। जिसकी ये बुद्धि होती है वास्तव में वो परमार्थ का अधिकारी होता है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, जगत भिन्न भिन्न में प्रतीत हुआ हुआ जो जगत है, उस भिन्न भिन्न प्रतीत हुए जगत के हर पदार्थ में तद अवच्छिन्न एक ही चैतन्य है, वही हरि। ये कई आकाश घट के अंदर घटाकाश बनकर प्रतीत हो रहा है, तो मठ के अंदर मठाकाश बनकर प्रतीत हो रहा है। आकाश एक है, उपाधि भिन्न है। मठ के अंदर प्रतीत होने वाला मठाकाश को देखकर यदि आपको आकाश की स्मृति हो आती है तो आपकी दृष्टि अच्छी है। घट के अंदर दिखने वाला घटाकाश के अनुभव करके, घटोपाधि के सहित घटाकाश का अनुभव करके, घट बाद करके आकाश की स्मृति हो आती है घटाकाश को देखकर, ये घटाकाश वही महाकाश है ये स्मृति हो आती है तो आपकी दृष्टि सही है। मठाकाश को देखकर ये जो मठ के अंदर का आकाश है यही वो महाकाश है ये दृष्टि बनती है तो आपकी दृष्टि सही है। टॉयलेट आकाश देखकर आपको वो आकाश की, टॉयलेट आकाश देखा है आपने, है देखा है टॉयलेट आकाश कैसा होता है, टॉयलेट आकाश मठाकाश कैसा होता है, घटाकाश कैसा होता है, है घटाकाश कैसा होता है, घट के अंदर का जो आकाश स्पेस खाली जगह घट जैसा होगा वैसे ही होगा तो फिर टॉयलेट आकाश कैसा होगा, किचन आकाश कैसा होगा, है मंदिर आकाश कैसा होगा। तो आप यही कहते हैं कि मंदिर के अंदर का जो आकाश है वो बहुत पवित्र है, टॉयलेट के अंदर का आकाश अपवित्र है। अरे भाई टॉयलेट अपवित्र है, आकाश अपवित्र नहीं है। मंदिर पवित्र है, मंदिर के अंदर का आकाश पवित्र नहीं है। मंदिर के अंदर का जो स्पेस जगह है आकाश है वो तो पवित्र अपवित्रता से रहित है। टॉयलेट के अंदर का जो आकाश है स्पेस है वो तो पवित्र अपवित्रता से रहित है। इसी तरह देहावच्छिन्न जो चैतन्य है वो सब का सब पवित्र और अपवित्र तो देह, स्थूल देह, सूक्ष्म देह आदि में है, उस देहावच्छिन्न में नहीं है। हमको बचपन में समझाया जाता था कि तुम गाय को जहां देख लो तुरंत उसको प्रणाम करो, स्पर्श करके प्रणाम करो। हमको बचपन में समझाया जाता था गाय को देखो तो उसको स्पर्श करके प्रणाम करो। लेकिन सावधान, कभी भी गधे का और सुगर का, सुंगर क्या बोलते हैं उसको, बुंड, सुगर गुजराती में बुंड बोलते हो, उसको स्पर्श नहीं करना। यदि स्पर्श कर लोगे तो स्नान करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेव जी किसको, उपाधि में भेद है, गोवच्छिन्न चैतन्य और भुंडावच्छिन्न चैतन्य। तो चैतन्य कई वो पवित्र होगा, तो ये दृष्टि बनती है तो आपकी दृष्टि सही है। इसके लिए ये प्रकरण चल रहा है, तदेवाग्नि तदादित्य तद वायुस्तु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदापस्तद प्रजापति तद एव शुक्रम शुद्धम। शुक्र शब्द का अर्थ भाष्यकार शंकराचार्य जी ने शुद्धम किया, और शुक्र शब्द का सामान्य अर्थ कारण के रूप में भी ले सकते हो, क्योंकि देह कारण के रूप में शुक्राणु महत्वपूर्ण होने के कारण शुक्र को बीज के रूप में ही लिया जाता है, इसलिए तदेव शुक्रम या तदेव शुद्धम। शुद्ध जो है वो तत् है, जगत में जो शुद्धता है वही तत्पद है, तद है, और जो तत् है वही शुद्ध है। तत् कभी अशुद्ध नहीं हो सकता है, बस। तत् ब्रह्म, ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ, यहां तत् ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है शुद्ध ब्रह्म के लिए नहीं कहा गया है, तत्पद का लक्ष्यार्थ के लिए नहीं कहा गया है। तत् ब्रह्म हिरण्यगर्भ सूत्र आत्मा, तद आपस, आप माने जल, तत् प्रजापति वही प्रजापति है, वही जल है, इसलिए जल एव प्रजापति, माने प्रजापति रेव तत् तदेव प्रजापति, जल रेव तत् तदेव जल, शुद्धम एव तत् तदेव शुद्धम इत्यादि सबके साथ तत् का अन्वय करते हुए सर्वत्र तत् का अनुवृत्ति है, सर्वत्र तत् का अनुवृत्ति है। उपाधियों की व्यावृत्ति है, व्यतिरेकता है, सूर्य चंद्रमा नहीं हो सकता है, चंद्रमा सूर्य नहीं हो सकता, सूर्य अग्नि नहीं हो सकता, अग्नि सूर्य नहीं हो सकता, अग्नि चंद्रमा नहीं हो सकता, अग्नि जल नहीं हो सकता। तो जल का अग्नि में बेतरे, अग्नि का जल में बेतरे, सूर्य का चंद्रमा में बेतरे, चंद्रमा का सूर्य में बेतरे। ये जितने भी उपाधि को यहां संकेत किया गया है, वर्णन किया गया है, ये उपाधि परस्पर एक दूसरे में व्यतिरेक होते हैं, परंतु तद उपाधि अवच्छिन्न जो चैतन्य है वो सभी में अन्वय रहता है। इसलिए अन्वीत होने वाला जो तत्व है वही तत्पद का लक्ष्यार्थ है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।